कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के वचन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। हम जानते हैं कि आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन आज हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और हमारे विचारों को खोल दे, हमें एकाग्रता बन दे, ताकि जब हम आपके वचन सुने, आपके वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, जो अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप उनसे बातचीत करें, उनके जीवन को छुएं, ताकि वे जान पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी हर एक आवश्यकताओं को समझते हैं। प्रभु, आप उनकी भी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अध्याय 10 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इसका विषय है रजत अर्थात राजसी तुरही क्रमवत प्रस्थान। हम देखते हैं कि प्रस्थान की तैयारी में सबसे अंतिम आदेश दो चांदी की तुरही बनाने का था। तब जंगल का प्रस्थान इस अध्याय के 11 पद से आरंभ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे चांदी की तुरहियां। आइए हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो संख्या साक्षी की है। किसी भी मामले की सच्चाई दो जनों की गवाही से सिद्ध होती है। निर्जन प्रदेश यात्रा में इसराइल की मदद के लिए ये तुरही प्रयोग में लाई जाती थी। हम आगे पढ़ते हैं गिनती 10 उसके 3 और 4 पद में। और जब वे दोनों फूकी जाए, तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और यदि एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं, तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। एक तुरही के फूके जाने का मतलब प्रधानों के बुलाने का था। इससे याद आता है कि कलिसिया को एकत्र करने के लिए अंतिम तुरही फूकी जाएगी। अंतिम तुरही से मेरा विश्वास है कि मसीह की आखिरी आवाज, जो उसकी अंतिम बुलाहट भी होगी। लौदिकिया की कलिसिया को उसका अंतिम निमंत्रण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 20 पद में है, जिसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मित्रों, अपनी अंतिम पुकार में वह कलिसिया को इस संसार से बाहर बुला लेगा। केवल एक तुरही, जो प्रभु यीशु की वाणी है, सभी विश्वासियों को एकत्र कर लेगी। इसी को हम कलिसिया का ऊपर उठा लिया जाना कहते हैं। हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 से 7 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम लोग सांस बांध कर फूको, तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांध कर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांध कर फूके, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूकना, परंतु सांस बांध कर नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्जन प्रदेश यात्रा के दौरान इस अनगिनत लोगों को इकट्ठा करने में इन तुरहियों का प्रयोग किया जाता था। हम गिनती उसके 10 और 9 पद में पढ़ते हैं, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। इन तुरहियों का दूसरा प्रयोग युद्ध के समय होता था। हम गिनती 10 अध्याय के 10 पद में आगे पढ़ते हैं, और अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होमबलि और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इन तुरहियों की ध्वनि से विशिष्ट निर्धारित समय एवं विशेष अवसरों का भी बोध होता है। यह तुरहियां चांदी की बनी थी, जो छुटकारे की धातु के रूप में जानी जाती है, और छुटकारा पाए लोगों को पुकारने के लिए इनको फूंका जाता था। परमेश्वर ने इस प्रकार के यात्रा के चलते उनकी मदद की। निर्जन प्रदेश अर्थात जंगल में यात्रा करते वक्त लोगों को इशारा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। आइए अब हम आगे देखें क्रमवद यात्रा। हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इसराइली सीनै के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जंगल में ठहर गया। लगभग एक वर्ष तक वे लोग सीनै के चाहों ओर निवास करते थे, जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था प्रदान की, रजत तुरहियों का आदेश दिया और तुरहियां बनकर तैयार की गई। अब तुरही फूकी गई और उनकी प्रस्थान यात्रा भी आरंभ हो गई। मित्रों, इस अध्याय में इन बातों को विस्तार पूर्वक से बताया गया है। पिछले अध्याय 2 में जिस मिलन शिविर की योजना का विवरण है, उसका पुनः अवलोकन करें। मिलाप तंबू के चहों ओर लेवी वंश डेरा डाले पड़े थे। मूसा और हारून पूर्व की ओर, मरारे उत्तर दिशा में, गर्शोन पश्चिम की ओर तथा कहात दक्षिण दिशा में निवास किए थे। शिविर के उस पार 12 गोत्र डेरा डाले थे, जिनमें यहूदा, इसाकर और जबलून पूर्व में, दान, अशेर और नप्ताली उत्तर में, एप्रेम, मनस्से और विन्यामीन पश्चिम में, और रूबेन, शमोन और गाद दक्षिण में बसते थे। मित्रों, किसी प्रातः शीघ्र ही इसराइल के शिविर में खलबली मचती है, क्योंकि आच्छादित बादल खंभा उठ गया। प्रत्येक परिवार अपनी चीजें बटोरते, तंबू भी उतार लिया जाता। अब समय चल पड़ने का है, तो सबसे पहले वे क्या करते? मूसा और हारून संकेत देते और चांदी की तुरहियां फूंकी जाती कि सभी लोग सतर्क हो जाएं। तब वाचा के संदूक की अगुवाई में प्रस्थान यात्रा होती। सबसे पहले कौन चलता है? कहात का परिवार संदूक अर्थात मंजूसा को लेकर सबसे आगे होते। इस प्रकार वाचा का संदूक यात्रा की अगुवाई करता था। संसार के इस बिहड़ जंगल में मसीह यीशु भी अपनी कलीसिया की अगुवाई करता है। संदूक यीशु मसीह की तस्वीर है। मित्रों, जब पहली तुरही फूकती तो मूसा, हारून, वाचा संदूक समेत आगे होते। तुरही फिर फूकती और पूर्व से यहूदा, इस्साकर और जबलून के साथ यहूदा के ध्वज के नीचे हाजिर होते। उनके पीछे गर्शोन और मरारी तंबू का कुछ सामान लिए हुए, जो उसके साथ भारी सामान भी था। तब तुरही फूकी जाती। रूबेन, शिमोन और गाद के साथ रूबेन के झंडे तले चलते। तुरही पुनः फूकी जाती और उनके पीछे कहाती चलते। वे संदूक की अपेक्षा तंबू की साज सज्जा का भी सभी लकड़ी का सामान उनके कांधे पर लादे चलते थे। तुरही के पुनः फूकने के साथ एप्रेम व उसके साथ मनश्शे और बिन्यामीन उसी के प्रतीक चिन्ह पर चलते। अंत में दान, आशेर और नप्ताली के साथ दान के झंडे तले चलते। तत्पश्चात बचे कुचे लोग, मिली जुली भीड़, जिनमें मिश्रित अर्थात संकर वंशी इसराइली व मिश्रित थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वे जाएं अथवा नहीं। उनका दिमाग स्थिर नहीं था और यात्रा के दौरान सदैव सरदर्द ही बने रहे। वह बदमाश नवयुवक जिसका वर्णन हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 24 अध्याय में पढ़ते हैं। उसका पिता मिस्री व माता इसराइली थी और वह इसी झुंड का एक सदस्य था। क्या आपको पता है कि तुरहियां 7 बार फूंकी गई? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी तुरहियां 7 बार फूंकने की चर्चा है। वे सातों तुरही का संबंध इसराइली लोगों से है। महाविपत्ति काल में उन 7 तुरही के फूंकने से पृथ्वी के कोने कोने से इसराइली वंशीय अपने देश में वापिस आएंगे। अधिकतर लोग पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय उसके 52 में चर्चित अंतिम तुरही का संबंध प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की अंतिम तुरही से जोड़कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कलीसिया महाविपत्ति की समय अवधि से गुजर रही है, पर तो भी क्रंथियों में चर्चित अंतिम तुरही परमेश्वर के पुत्र की आवाज है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में है। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार उसकी आवाज प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के सदृश्य होगी। हम इसको समझते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 और 11 में यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही की ध्वनि सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, मैं ही प्रथम हूं, अंतिम और जीवित हूं। यूहन्ना ने किसको देखा? जब मुड़कर जानना चाहा कि किसने उससे बात की, उसने महिमामय यीशु को देखा जो महायाजक है। उसकी आवाज तुरही के तुल्य है, उसकी वाणी से मृतक जी उठेंगे। मित्रों, हमारे मरणहार शरीर को वह अमरता में बदल देगा जब उसकी कलीसिया को लेने वह आएगा। कलीसिया के लिए तुरही का शब्द परमेश्वर के पुत्र के शब्द के सरीखा होगा। तुरहियों का संबंध इसराइल की संतान से है। तुरही के शब्द ने ही उन्हें यात्रा में प्रेरणा प्रदान की। तुरही के द्वारा ही वे संसार के बीहड़ जंगल में निकलकर आगे पहुंचे, अर्थात देश में बसने पाएंगे। हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 29 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मूसा ने अपने ससुर रूएल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इसराइल के विषय में भला ही कहा है। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां मूसा और उसके ससुर की मुठभेड़ की चर्चा है। मूसा उसे आमंत्रित करते हैं। इसको कलीसिया पर भी लागू किया जा सकता है। आज हम संसार में ऊपरी अर्थात यात्री या परदेशी, हम यहाँ जंगल में हैं, परंतु यह यात्रा हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति तक पहुंचाएगी। हमारा निमंत्रण उसी प्रकार का है जैसा मूसा ने दिया, आप मेरे साथ चलें। मित्रों, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाकर परमेश्वर की संतान नहीं है तो अभी इस समूह में शामिल हो जाएं। ऐसा समय में जब हम प्रभु यीशु की उपस्थिति के पहुंचने के समीप हैं, हमारा ऐसा झुंड नहीं जो दूसरों से बेहतर है। हम पापी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। यदि अपने को पापी महसूस करते और मुक्तिदाता की आवश्यकता को महसूस करते हैं तो उसकी ओर सदा विश्वास से फिरें, उस पर भरोसा रखें तथा इस यात्रा में शामिल हो जाएं। यह कोई विरोध पक्ष का जुलूस नहीं है, यह उद्धार का जुलूस है, छुटकारे का अभियान है। यह यात्रा सियोन तक है, संसारिक सियोन नहीं परंतु एक स्वर्गिक सियोन, यरूशलेम नगरी जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरेगी, जो दुल्हन की तरह संवारे हुए अपने दूल्हे से मिलने को तैयार होगी। हम गिनती की पुस्तक 10 उसके 30 पद में पढ़ते हैं, होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। यहां पर अब हम देखते हैं कि अब मूसा बातचीत में लिप्त है। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका ससुर होबाब उसके साथ नहीं जाना चाहता है, परंतु अपने घर वापस लौटना चाहता था। मूसा ने उसे निम्न उत्तर दिए, आइए देखें गिनती 10 उसके 31 पद में, फिर मूसा ने कहा, हमको न छोड़, क्योंकि हमें जंगल में कहां कहां डेरा खड़ा करना चाहिए यह तुझे ही मालूम है, तू हमारे लिए आंखों का काम देना। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां मैं मूसा को बिल्कुल नहीं समझता। परमेश्वर ने मूसा से स्पष्ट कहा कि तुम्हारी अगुवाई के लिए मैं दिन को बादल का खंभा व रात्रि के लिए आग का खंभा और आगे प्रस्थान के लिए वाचा का संदूक प्रदान करता हूँ। दोनों आच्छादित वस्तु मसीह की प्रतीक है, वह अगुआ है, परंतु मूसा अपने ससुर से विनती करता है कि अगुवाई के लिए उसकी आवश्यकता है। मित्रों, इस बूढ़े ने अपना जीवन मिद्यान में बिताया था, वह मिद्यानी था और उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, उससे बड़ी मदद मिल सकती थी, परंतु उन्हें स्वाभाविक प्राकृतिक बातों पर निर्भर नहीं होना था। इस बूढ़े को ईश्वर उससे क्या चाहता है इसकी समझ बिल्कुल नहीं थी। अभाग्यवश कलीसिया भी विशेषज्ञों व निपुण लोगों की बात सुन रही है जो आत्मिकता से बिल्कुल परे हैं। फलस्वरूप चर्च अपने फूल भरे पथ मार्ग से भटक जाती है और अनेक बार भारी कठिनाई में पड़ते हैं। आज के चर्च अगुओं पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जैसे कलीसिया के सेवकों और पुरोहितगण, अन्य पदाधिकारियों पर भी। क्या आपको निश्चय है कि मसीह आपकी कलीसिया का सिर अर्थात प्रधान है? क्या वह आपकी अगुवाई करता है, या आज आप किसी मनुष्य से सलाह मशविरा करने जाते हैं? वही आपकी आंख बन जाता है, अर्थात वह आपका मार्गदर्शक होता है। मित्रों, मूसा ने यहाँ गलती की है। मूसा इस प्रकार की गलती कर सका क्योंकि वह भी एक पापी था। मजेदार बात तो यह है कि उसने अपनी गलती को अपने ही हाथों से लिखा है। मुझे डर है कि हम में से कई ऐसी गलती किए हैं, उन्हें अपने हाथों से लिखना भी चाहिए। हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर इसराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वे छावनी के खान से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। मित्रों, अब वे अपने मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर उनका अगुआ है। परमेश्वर स्वयं भूमि की खोज में लगा है। उनके लिए स्थान खोजने के लिए मूसा को अपने ससुर से मदद की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। हम गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसके 35 और 36 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरी वैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। मित्रों, स्पष्ट रूप से मूसा की नित्य प्रति प्रार्थना का एक सुंदर नमूना है जिसे वह यात्रा भर प्रातः व संध्या वंदना में करता था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपना अध्ययन अध्याय 11 से बनाए रखेंगे। इसका विषय है भोजन के लिए कुड़कुड़ाना अर्थात बड़बड़ाना, प्रभु को अप्रसन्न करना। इसराइली लोग सीनै पर्वत छोड़ चुके हैं और अध्याय 11 और 12 में सीनै से कादेश तक की यात्रा का वर्णन है। हम पाते हैं कि जब समस्या खड़ी होती तो लोग बड़बड़ाने लगते हैं। यह बहुत गंभीर बात थी और हमारे लिए भी अनेक सीख अर्थात सबक है। आइए हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। मित्रों, जब भी लोगों ने शिकायत की कि प्रभु की महिमा दिखाई पड़ी, वह उनके कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने से अप्रसन्न हुआ। हमें निश्चित होना चाहिए कि प्रभु आज भी अनेक संतों की आलोचनाओं उनकी शिकायतों से अप्रसन्न होता है। वे सदा ही दोष ढूंढते और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। प्रिय मित्र, परमेश्वर आपसे ऐसा नहीं चाहता है। वह आपको हमेशा एक प्रसन्न और आनंदित मसीही के रूप में देखना चाहता है। हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 2 और 3 पद में आगे पढ़ते हैं, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्योंकि यहोवा की आग उनमें से जल उठी थी। इन शिकायतों के पीछे क्या बात है? शरारती लोग कौन थे? हम उन्हें यहाँ चिन्हित कर सकते हैं और आज भी ऐसे लोगों को पहचाना जा सकता है। हम गिनती 11 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। मित्रों ध्यान दीजिए कि किसने यह सब आरंभ किया। यह मिली जुली भीड़ थी और आपको याद होगा कि मिश्रित भीड़ में वे लोग थे जिन्हें उनकी स्थिति का कोई भी ज्ञान नहीं था। वे उस स्थान तक नहीं पहुंच सके कि उन्हें किसी गोत्र का नाम दिया जाता। उन्हें उनकी वंशावली के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उन्हें नहीं पता कि उनको जंगल यात्रा के लिए निकलना चाहिए अथवा नहीं। उनका आरंभ मिश्रित विवाह की वजह से हुआ। उनमें से कई के माता पिता एक तो मिस्र देश से व दूसरा इसराइल के शिविर में से थे जो वहां मौजूद थे। मिस्री होने के नाते उन्हें मिस्र देश पसंद था और इसराइली होने के कारण वे मिलन शिविर को पसंद करते थे। मित्रों हमारी कलीसियाएं भी आजकल ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है। चर्च में लोगों के साथ मिलकर वे चर्च जाना पसंद करते हैं। वे अच्छा नैतिक जीवन जीना तथा अच्छे समझे जाने के लिए किसी न किसी कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, पर हफ्ते के दौरान दुनिया के लोगों के साथ जीवन बिताते हैं। वे मिश्रित भीड़ के समान हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे किस समूह के अंग हैं। नया जन्म पाया कि नहीं उसका उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है और न ही उनके वंशावली गिना सकते हैं, अर्थात वे जान सकते हैं। मैंने अनेक वर्षों से यह खोज किया है कि चर्च में गड़बड़ी करने वाले लोग इसी मिश्रित भीड़ में से हैं। वे दुनिया के लोगों के हमराही और ईश्वर के लोगों के संगी भी हैं। वे चर्च में दावत का आनंद लेते हैं पर बाइबल अध्ययन उन्हें पसंद नहीं। वे यात्रा में अनगिनत होकर साक्षी संदूक के निकट नहीं चलना चाहते हैं, परंतु पीछे इसलिए ठहरते हैं कि समय आने पर वहां से भाग निकले। उन्हें अपने विश्वास के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं होता। मित्रों दूसरों को आत्मिक आशीषें प्राप्त करते देखकर उन्हें कुछ भी खुशी नहीं होती है और कलीसिया में उन्हें बेचैनी सा लगता है, परंतु संसार में भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे कहीं भी फिट नहीं पाए जाते हैं, किसी गोल छल्ले में चौकोर डंडी के समान है। ये वे ही लोग हैं जो शरारती और सभी समस्याओं को जन्म देते हैं। मित्रों आज आप कहां पर हैं? क्या आप इन मिश्रित लोगों की तरह हैं? यदि हाँ तो आज ही फैसला कीजिए कि आप किस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं, प्रभु की संगति में या संसार की भीड़ में। मित्रों आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन निर्णय आप अवश्य लें कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, प्रभु की निकटता में या उस मिश्रित भीड़ की तरह जो सब तरफ अर्थात संसार में और कलीसिया में शामिल होती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
मसीह महिमा तेरी महिमा मसीह महिमा ओ सुबह को ओ दोपहर को ओ संध्या को सारी रात्रि को मसीह महिमा तेरी मसी महिमा हो, महिमा ही महिमा, मसी महिमा।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
Isn't